carina.
Το χουβά έκανα.
Βέει, κουστο καϊένα.
Κουτζο τα τσαό.
Πίτε κουκούσνα.
Κουτζ καϊένα. Κουτζ τεάκο.
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए. मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़, प्रोड्यूसर हमारी नुख़बत मलिक हैं. और फेसबुक पे जैसा कि मैंने आपको एक खुशखबरी सुनाई थी कि आज हमारे प्रोग्राम में एक नहीं बल्कि तीन मेहमान हैं, लेकिन अच्छा यह है कि बारी बारी मेहमानों का खैर मकदम किया जाए. तो पहले मेहमान से तारुफ़ करवाने से पहले एक झलक सुनते हैं उनके फ़न की.
आपको सबसे पहले
फर्स्ट थिंग इज गेटिंग योर ग्लो राइट. इट शुड कम आउट प्रॉपर एंड फुल बॉडी.
वजन के साथ आए फूट. बाकी लिप्स के
द फ्लूट शुड बी हेल्ड जस्ट बिलो द लोअर लिप एंड पुश इट अप स्लाइटली. The blow hole should be in straight line with the center of your lips so that air that you blow can go straight. People mistakenly feel just ensure that even if it
इसको धीरे धीरे कंट्रोल करें.
तो समीन, ये सिखाने वाले और बजाने वाले दोनों हैं सुभाष ठाकुर साहब, जो पटना बिहार से हमारे साथ हैं. आदाब ठाकुर साहब.
आदाब. आदाब.
बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, बल्कि हमारे अगले जो दो मेहमान हैं उनसे भी तारुफ करवाने का. उनसे हम अभी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपके लिए हमारे प्रोग्राम में अंजनी कुमार गुप्ता आए थे. उनके कहने के मुताबिक, क्योंकि वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, कि भारत के जो टॉप के इस वक्त बांसुरी बनाने वाले हैं वो सुभाष ठाकुर साहब हैं. तो कितने, थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में, यानी क्या बहुत से लोग बांसुरी बना रहे हैं इस वक्त इंडिया में? कितने लोग हैं जिनमें आपका बिल्कुल ऊपर काम है?
नहीं, मैं बताऊं, मैं सबसे पहले बांसुरी बजाना सीखा और एज ए प्रोफेशनल बांसुरी प्लेयर मैंने काम करना शुरू किया. फिर मैंने भारत सरकार में बांसुरी वादक के रूप में मेरी नौकरी लग गई और मैं जब दिल्ली आया 99 में जॉब के लिए भारत सरकार में बांसुरी वादक के रूप में, फिर मैं यहाँ प्राइवेट में स्टूडियो में काम करता था, प्रोग्राम में जाता था, तो अच्छी बांसुरियाँ नहीं मिल रही थी मुझे. तो मैं सबसे पहले अपने लिए बांसुरी बनाना शुरू किया और जब अपने लिए बनाना शुरू किया फिर मेरे गुरु जी, मेरे गुरु भाई और मित्र ने, उनको अच्छी लगी, उन्होंने कहा मेरे लिए भी बनाओ, मेरे लिए भी बनाओ. फिर उनके लिए भी बनाने लगा. फिर धीरे धीरे और जितने बड़े बजाने वाले हैं उन्होंने भी कहा मेरे लिए बनाओ. ऐसे ही कब मैं बांसुरी वादक से बांसुरी बनाने वाला बन गया मुझे भी पता नहीं चला. धीरे धीरे आज बांसुरी बनाने में मेरा नाम थोड़ा हो गया है. मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे ऊपर हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सबसे अच्छे बजाने वाले पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो सब मेरी बांसुरी बजाते हैं.
तो बस इससे साबित हो, इसीलिए मैंने उनका नाम लिया गुप्ता जी का, कि मैंने कहा कि जो बजाता है वही जानता है कि कमाल क्या है बांसुरी का. तो ये बताइए कि वैसे बजाना अच्छा लगता था कि बनाना अच्छा लगता है?
देखिए, बजाना तो अच्छा है सबसे पहले, उसके जैसा बनाना तो नहीं होगा, लेकिन अच्छी बनेगी तभी अच्छी बजेगी.
दुरुस्त. तो सुभाष जी, कौन लोग हैं, आपने कहा पूरी दुनिया में जो अच्छा बजाने वाले हैं, उसमें कोई नाम अगर आप हमें बताएं?
सबसे जो बड़ा नाम है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी, पंडित रोनू मजुमदार जी, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी, और फिल्मों में ए आर रहमान के जो फ्लोटिस्ट हैं नवीन जी, और जितने भी पारसनाथ हैं सलीम सुलेमान के साथ बजाते हैं, जो फेमस फ्लूट प्लेयर हैं अभी फिल्म इंडस्ट्री के, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, वो मेरी बजाते हैं. हॉलीवुड में स्टीव जॉन्स हैं जी, ये सब मेरी बांसुरी बजाते हैं.
अच्छा, तो मैं आप क्योंकि इस वक्त फेसबुक पर भी हमारे सुनने वालों के साथ हैं और बहुत से लोग आप लोगों को खुशामदीद कह रहे हैं, तो मैं उनके नाम पढ़ दूं. यहाँ मैं ये बता दूं कि क्योंकि पाकिस्तान में हमारा एक टोल फ्री नंबर है, इसलिए ज़्यादातर कॉल्स हमें वहाँ से मिलती हैं, लेकिन फेसबुक पर इंडिया से भी और ख़ास तौर पर इंडियन कश्मीर से हमें बहुत लोग मैसेजेस करते हैं. तो मैं कहूँगी कि अगर आप इंडिया से कोई फोन करना चाहते हो, क्योंकि आपके पास टोल फ्री नंबर नहीं है, आप मैसेज में अपना नंबर लिख दें, हम आपको मिला लेंगे. अच्छा, शाजिया खान है, अल्ताफ अहमद, सैयद तहजीब अली, शोएब हसन निहालिका, वसीम अहमद भट्ट, अली इश्तियाक, कृष्ण लाल, जेबा खान खटक, آفتاب شبیر، راجہ امتیاز شہزاد، محمد شفیق خان، اعجاز. اب میں اور بھی نام پڑھتی جاؤں گی، لیکن اب میں آپ ہی نے میرے سے تعارف کروایا سبھاش ٹھاکر صاحب، لیکن ان دونوں مہمانوں کے بلانے سے پہلے میں ان کی آواز کی بھی ایک جھلک سنوانا چاہوں گی.
تیرے بھون پہ لے کے آیا چوڑیاں، او تیرے بھون پہ لے کے آیا چوڑیاں، میں چوڑی والا بھون پہ لے کے آیا چوڑیاں، میاں جی چوڑی تم لے لو نا، میاں جی چوڑی تم لے لو، تم لے لو. تیرے بھون پہ لے کے آیا چوڑیاں، او تیرے بھون پہ لے کے آیا چوڑیاں.
میری پیٹی میں ہے لال لال بندیاں، او میری پیٹی میں ہے لال لال بندیاں، میاں جی بندی تم لے لو، ہائے میاں جی بندی تم لے لو، تم لے لو. میری پیٹی میں ہے لال لال بندیاں.
ہو مال سستا ہے مہنگا نہیں ہے، ہو مال سستا ہے مہنگا نہیں ہے، ہے ماتا ذرا دیکھ تو لو، ہے ہے ماتا ذرا دیکھ تو لو، ذرا دیکھو.
آج بہنی تیرے ہاتھوں سے کروں گی، آج بہنی تیرے ہاتھوں سے کروں گی، ہو ماتا چاہے جو دے دو نا، میاں جی چاہے جو دے دو، جو دے دو.
تیرے بھون پہ لے گیا یا چوڑیاں.
تو سامعین، دو آوازیں آپ نے سنی، بڑی میٹھی اور خوبصورت آوازیں، یہ ہیں اندرجیت گنگولی صاحب اور برنالی گنگولی، ان کی بیگم، اور دونوں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. یہ بھی پٹنہ بہار سے ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں کو آداب عرض ہے.
آداب.
بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. تو آپ کے ساتھ وہ بھی ہیں برنالی بھی، یا آپ اکیلے ہیں؟
برنالی جی بھی ہیں.
اچھا،
ان کو آپ ٹرائی بھی کر رہے ہیں لیکن ان کا نمبر یہ نیٹورک کام نہیں کر
رہا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم کوشش
ہے لیکن وہ نیٹورک میں، تو اسی میں آپ بول سکتے ہیں.
ہم بالکل ان کو کوشش کرتے رہیں گے. اچھا یہ مجھے بتائیے اندرجیت، کہ آپ سے تعارف میرا کروایا سبھاش ٹھاکر صاحب نے، اور کہا کہ بہت ہی ہمارے ٹاپ اچھے غزل، کمال کے غزل گانے والے یہاں پٹنہ میں، تو آپ ان کی بانسری کے لیے کچھ مجھے بتائیے. آپ کیونکہ کمپوزر بھی ہیں، سنگر بھی ہیں، کیا کہتے ہیں ان کی بانسری کے لیے؟
ان کی بانسری، ہم لوگ بچپن سے، ہم لوگ یہ تو کلاکار ہم لوگ ہیں لیکن بچپن کے دوست بھی ہیں، اور دونوں اب بانسری کے بارے میں تو ان کا کچھ کہنا ہی نہیں ہے، بجانے میں اور بنانے میں دونوں، یہ فلوٹ میکر بھی ہوا ایک نمبر ہے ہندوستان میں، اور ان کی بانسری آپ کہیں بھی ویسٹ انڈیز، ترینیداد، ساؤتھ افریقہ، یہ پورے ورلڈ میں ان کی بانسری جاتی ہے. آپ پونم فلوٹ اگر ایک بار سرچ کیجیے تو آپ کو پتا چل جائے کیا ہے، اور اس کے بارے میں کیا میں نے سورج کو دیا دکھانا، سبھاش ٹھاکر کے بارے میں اگر بانسری کے بارے میں میں کچھ بتاؤں تو سورج کو دیا دکھانے کی جیسے ہو جائے گی، تو زیادہ بولنا نہیں چاہتے کیونکہ میرے یہ متر بھی ہیں، بہت ہی اچھے فرینڈ ہیں. تو میں
نہیں، مجھے اندازہ ہوا
کا بھی قائل ہوں، اور ایسی بانسری بناتی اتنے سر میں، بچپن سے ہی ان کا دیکھتے تھے، وہ اتنا اچھا بانسری وہ بناتے بھی تھے، اسی لیے آج انڈیا کا نمبر ون فلوٹ میکر میں ہے، پونم فلوٹ نمبر ون فلوٹ.
اچھا تو سبھاش جی، پھر آپ بتائیے مجھے کہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو نمبر ون بنایا، یعنی فلوٹ میکر، کیا فرق ہے؟
نہیں 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 نہیں، یہ ان کا لگن، ان کے گرو جی بھی اچھے اچھے گروؤں کے سنگت میں، سبھاش ٹھاکر جی بچپن سے رہے ہیں، ان کے جو پرارمبک گرو رما رمن بہاری جی تھے، پھر یہ دلی میں گئے، دلی میں بھی سارے اچھے فلوٹسٹ، جتنے میں نے اچھے اچھے گروؤں کے سنسرگ میں یہ رہے ہیں، اور ان سے ان کو سیکھنے کا موقع ملا. اور ان کے پلیئنگ میں ایک الگ بات ہے، جب آپ کبھی بیٹھ کے سنیں گے تو ایک الگ بات.
میں ان سے ضرور سنوں گی، اور مجھے اندازہ ہوا بڑے پیار کرنے والے آپ لوگ دوست ہیں، لیکن میں ان سے یہ بات نہیں پوچھ رہی تھی کیونکہ یہ ٹیکنیکل بات جانتے ہیں سبھاش ٹھاکر صاحب، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کون سی چیز ہے جو بانسی آپ جو بناتے ہیں سبھاش جی، اس کو الگ کرتی ہے دوسرے لوگوں سے، آپ بتائیے مجھے.
اچھا ہم بتائیں
جی سبھاش جی،
ان کی سب سے تو ہے
نہیں نہیں سبھاش جی سے میں سوال پوچھ رہی ہوں، سبھاش جی بتائیں.
जी मैं लोगों को कस्टमाइज बांसुरी, जब मैं खुद जाता था बजाने के लिए स्टूडियो में या प्रोग्राम में, तो मुझे लगता था कि मेरी बांसुरी ऐसी होती तो ज्यादा अच्छी होती, जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं मिल पाती थी। तो ऐसा ही मैंने सोचा कि सारे जितने भी फ्लूट प्लेयर हैं, बांसुरी प्लेयर हैं, उनको जैसा उनको चाहिए वैसा मैं बना के दूं, उनके बजाने के हिसाब से उनको बना के दूं।
अच्छा।
तो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा। जो वही चीज मुझे सब सारे लोग मेरे पास आए, खेलते हुए आए, क्योंकि जैसा उनको चाहिए था कस्टमाइज करके दिया मैंने सारे लोगों को।
अच्छा, बड़ी बात है ये। अच्छा, आपसे मैं बांसुरी भी सुनूंगी, आपके पास मुझे उम्मीद है कि इस वक्त होगी, और लेकिन मैं कुछ नाम पढ़ना चाहती हूँ। वकास राजा, शाह नूरसई, शफकतुल्ला मरवत और आफ्ताब शबीर, अल्ताफ अहमद, मकसूद डार, फजल मरी, बख्तजादा सालारजई, तारिक शिनाली, इफ्तिखार अहमद, तारिक शिनाली के दो मैसेजेस हैं, शेख वाला, अल्ताफ अहमद, कुछ लोगों ने अपने भेजे हैं टेलीफोन खासतौर पर इंडिया से, मैं अभी हम आपको कोशिश करेंगे मिलाने की, मुख्तार अहमद, ज़ीशान अली, मोहम्मद इदरीस और जनाब कुमार रजाक साहिबान। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और हम कोशिश करेंगे टेलीफोन पर आपसे रब्ता करने की। लेकिन अब मैं कहूँगी ठाकुर साहब, सुभाष ठाकुर जी, आप हमें सुनाइए थोड़ी सी अपनी बांसुरी, ताकि हम ये कमाल भी आपका देखें।
चलिए, मैं अभी तैयारी में नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ सुना पाऊँ।
जी जी, जरूर, बिल्कुल, शुरू कीजिए। समीन ये हमारे साथ हैं, सुभाष ठाकुर साहब, और जरा बांसुरी उठा जी।
छोटा सा एक
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। मैं इसलिए खामोश थी कि मैं इंतजार में थी कि शायद आगे भी चलेगी। बहुत आपने अच्छी तरह सुना। अच्छा, बर्नाली जी भी हमारे साथ हैं, और बर्नाली जी, आप और इंद्रजीत दोनों, अगर पहले तो आप मुझे बताइए कि आपका ज्यादा जो है दिलचस्पी डांस में है कि म्यूजिक में है?
दोनों में ही है। मैं एज अ सिंगर भी हूँ और डांसर भी हूँ, तो दोनों ही मेरे जीवन के दो पहलू हैं। तो मैं सिंगर भी हूँ और मैं डांसर भी हूँ।
तो मिले कैसे ये दोनों, बर्नाली और इंद्रजीत?
ये दो हम मिले कैसे? बस यही गाते गाते मिल गए एक दूसरे के साथ।
अच्छा।
बस गजल गाते रहे और हम दोनों मिल गए।
तो ये गज़ल की जो बात है, ये मुझे बड़ी पसंद भी आई, और मैंने आपका सुना भी जब, तो बड़ी उमदगी के साथ आप दोनों गाते हैं उर्दू की गज़लें। तो मैं चाहूँगी कि बल्कि एक उर्दू का जो है, मुझे बताया इन्होंने, इंद्रजीत ने, कि आप लोगों ने जो गाया है प्यारी जबान उर्दू, तो ये अगर आप हमें सुना दें दोनों मिलके। आप लोग आस पास हैं एक दूसरे के, दूर हैं एक दूसरे से? बस ठीक है, तो एक दूसरे को देख सकते हैं तो सही है। तो चलिए, मैं आप ये सुनाइए हमें, और उसके बाद हम आगे बातें करेंगे। समीन, इंद्रजीत गंगोली और बर्नाली गंगोली, इनसे सुनते हैं।
जी, अली सरदार जाफरी।
जी हाँ, अली सरदार जाफरी का बड़ा मशहूर तराना है ये। जी
हाँ, इसकी धुन भी हमने ही बनाई है, ये धुन
जी। जी सुनाइए जी।
हमारी प्यारी जबान उर्दू, हमारी प्यारी जबान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू। हमारी प्यारी जबान उर्दू।
जी, मेरा ख्याल है अगर दो लोगों में मुश्किल हो रही है, बेशक एक सुना दे, मुझे अंदाजा है कि टेलीफोन पर। जी,
हसीन दिलकश जवान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हमारी प्यारी जबान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू।
बहुत खूब, बहुत
तो
जी बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है टेलीफोन पर मुश्किल होता है और फिर मौसीकी के बगैर तो अच्छा। तो बर्नाली बाकी हिस्सा कुछ या कोई चीज बर्नाली भी सुना दें आप अलग, यानी सोलो, बजाय इसके कि हमें पता है आप साथ साथ रहते हैं लेकिन हम जुदा करते हैं आप दोनों मोहब्बत करने वालों को इस वक्त जी, तो कुछ सुनाइए बर्नाली। बहुत खूबसूरत। और मैं सुभाष जी यहाँ बल्कि आपसे पूछूंगी कि ये दोनों तो यहाँ हमें थोड़ा सा, मैं आप दोनों से दरख्वास्त करूँगी, मुझे लगता है थोड़ा शोर आ रहा है, तो अगर आपके आसपास शोर है तो आप मेहरबानी से जरा सा किसी खामोश जगह चले जाइए, आप दोनों के टेलीफोनों में कुछ शोर है। तो सुभाष जी आप मुझे बताइए कुछ अपनी फैमिली के बारे में, कुछ बताइए।
मैं भी बिहार से हूँ और एक किसान परिवार से मैं जन्म लिया हूँ और मैं गांव में मेरा बचपन बीता है जो आज बांसुरी बनाने में मुझे काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है, क्योंकि गांव में पेड़ से काम करना, बांस लगाना, बांस को काटना, तो बांस की पहचान जो थी गांव के बचपन की वो बहुत ज्यादा काम दे रही है अभी बांसुरी बनाने में मुझे। और जैसे बांस काटने में जो काम होता था, फिनिशिंग जो आज करता हूँ, ये समय बहुत ज्यादा मेरा वो बचपन जो गाँव का बीता हुआ है वो काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है।
अच्छा, तो कहाँ गांव कहाँ है आपका बिहार में?
मैं बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में यजवार गांव है मेरा।
अच्छा, एक बात मैंने देखी है, मैंने जैसे मुजफ्फरपुर और बहुत सारे नाम है, झूमर तलैया और बहुत सारे नाम मैंने देखा है, बिहार के लोग रेडियो बहुत सुनते हैं। मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगती है ये बात क्योंकि रेडियो के लिए सुनने वाले जरूरी है, तो ये सच है कि बिहार में मुकाबलतन रेडियो बहुत सुना जाता है?
नहीं, वॉइस ऑफ अमेरिका मैं गांव में ही सुना करता था, शहर में दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली में तो सुनने को नहीं मिलता है वॉइस ऑफ अमेरिका, नहीं कोई भी रेडियो सुनने को जल्दी नहीं मिलता यहां पे।
अच्छा।
लेकिन गांव में मैंने काफी वॉइस ऑफ अमेरिका सुना है।
अच्छा।
बचपन में काफी सुना है और आपका ही प्रोग्राम को भी काफी सुना है।
मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि उस दिन जब मैंने आपको फोन किया और आपने कहा हाँ मैं प्रोग्राम सुनता हूँ, क्योंकि मतलब करते तो हैं हम प्रोग्राम लेकिन बुनियादी तौर पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है क्योंकि भारत के लिए नहीं है और इसके बावजूद बहुत जगह सुना जाता है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे बहुत ही अच्छे सुनने वाले जो हैं वो इंडिया में भी हैं जिस तरह पाकिस्तान में या यूएई में बहुत सुनने वाले हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि आपने बांसुरी से, क्योंकि आप बांसुरी के दरख्त को जानते थे, उस पौधे पेड़ को जानते थे, तो लेकिन म्यूजिक जो था, आप बांसुरी बजाते भी थे उस वक्त या नहीं बजाते थे छोटे बच्चे जब थे?
नहीं, गांव में नहीं, मैं 87 में आया पटना पढ़ने के लिए, कॉलेज में पढ़ाई के लिए, उसके बाद 88 में मैंने बांसुरी सीखने की मुझे इच्छा हुई और 88 से मैंने बांसुरी सीखना शुरू किया। फिर शुरू में तो मैं शौकिया बजाता था, फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं इसमें अपना करियर बनाया जा सकता है, फिर मैंने इसमें करियर बनाया और 99 में आके मुझे जॉब मिल गई एज ए बांसुरी वादक।
अच्छा, तो सुभाष जी हम बात कर रहे थे इनके, क्योंकि इनका परिवार साथ में है, तो आपके जो बेगम हैं उनको भी कोई शौक है मौसीकी से या किसी और फन से, या सिर्फ आपके परस्तार हैं, वो फैन है आपकी?
नहीं, म्यूजिक लवर है, संगीत सुनती है और ये पूनम फ्लूट्स का सारा बिजनेस वो संभालती है पूरी तरह, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, अपने स्टाफ वगैरह को देखना, पूरा फाइनेंशियल लॉजिस्टिक ई कॉमर्स जितने भी हैं सब वही देखती हैं।
तो क्या उनका नाम पूनम है?
हाँ, पूनम, पूनम है नाम उनका।
क्या मैंने सही अंदाजा लगाया?
जी।
तो आपके बच्चे कितने बड़े?
मेरे बच्चे कॉलेज में हैं और यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं अभी। बीएस कर रहे हैं और मेरी बिटिया क्लास 9th में.
तो उनको कोई शौक म्यूजिक से जैसे आप लोगों को?
मेरे बच्चे शौकिया बजाते हैं, मेरी बेटी शौकिया गाना गाती है, थोड़ा बांसुरी भी बजाती है, लेकिन शौकिया है ये लोग.
अच्छा, ज़ाहिर है अभी वो छोटे भी हैं ना और अपने लगे हुए हैं तो पढ़ाई के अंदर. तो अब मैं इंद्रजीत आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताइए कि आपका ये शुरू कैसे हुआ गाना गाने का? आपके खानदान में ये ट्रेडिशन थी, कोई और लोग भी?
ये ट्रेडिशन ही चला आ रहा है, क्योंकि हम लोग, मेरे फादर मदर अब म्यूजिक लवर थे और गाते भी थे, प्रोफेशनली नहीं गाए कभी मदर और फादर, पर मेरी सिस्टर ब्रदर जितने हैं ये लोग सब भी सारे प्रोग्राम किए हैं, प्रोफेशनली ये लोग गाए और बचपन से मेरे घर में संगीत का माहौल रहा है, तो हम इसलिए म्यूजिक करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई.
हाँ, कोई मुखालफत नहीं हुई आपको?
हाँ हाँ, कोई ऐसा कुछ.
अच्छा, मतलब हमारे सुनने वालों को बड़ा शौक होता है कि कोई सुने, मोहब्बत की कहानी भी सुने. बर्नाली तो टाल गई इस बात को, आप बताइए क्या हुआ, कहाँ मिले, कब मिले, क्या हुआ जब मिले थोड़ा सा?
ये तो अब मिले थे हम लोग एक, जैसे इनकी मदर हैं, बर्नाली की मदर यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में म्यूजिक की ये प्रोफेसर थी, अभी रिटायर हो गई हैं, तो मैं वहाँ जाता था एग्जाम देने, शॉर्ट में ही बोलता हूँ. तो वहाँ से फिर हम लोग गए थे, बहुत जगह गए, उसी दरमियान बर्नाली से मिले और एक शो हुआ था गजल की ही, वो अली मोहम्मद आजीज हैं, शायर, उर्दू शायर हैं
जी,
उनके इसमें एक शो किए थे शादी से पहले, उसमें हमने कुछ ट्यून बनाई थी अली मोहम्मद आजीज की कुछ गजलें लेके, तो वहीं हम लोग मिले अच्छी तरह से और कुछ हमने गजल बर्नाली की दिया और दोनों मिलके गाए, तो वो प्रोग्राम मेरा बहुत फिट रहा, बहुत
अच्छा. अच्छा,
तो उसके बाद से धीरे धीरे दोनों में ये थोड़ा हुआ, तो बाद हम लोग दोनों
क्या क्या हुआ थोड़ा थोड़ा. अब आप तो उनसे भी ज्यादा शर्मीले निकले, कुछ बता ही नहीं रहे क्या? तो फिर अच्छा, जालिम समाज था बीच में या जालिम समाज नहीं था?
क्या क्या मैंने क्या नहीं बताया, मैंने उसी, मैंने धीरे 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 फिर दोनों में ये हुआ, फिर अपना घूमना फिरना भी चालू हुआ, उस समय हम भी कॉलेज में थे, वो भी अच्छा, कॉलेज में थी, फिर बाद में जॉब हो गया, मैं भी यहाँ पे विधान मंडल में हूँ, जॉब में भी हूँ और ये भी मेरा प्रोफेशन है, म्यूजिक भी एक प्रोफेशन ही है मेरा.
अच्छा,
तो ये भी चलता है दोनों का.
तो आप दोनों के बीच में जालिम समाज आया है या नहीं आया, या आराम से शादी हो गई?
नहीं, कुछ तो आए थे, कुछ विलेन सबके साथ रहते हैं, मेरे इसमें भी विलेन आए जो इनके मोहल्ला में चाहते थे इन्हें, वो होगा तो हम दूसरे एरिया से आते थे, दरमियान जो है वो सबको ये करते हुए, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं तो सबको चीरते हुए निकलते हैं, तो ऐसे ही हम चीरते हुए निकले और हम हासिल कर लिए बर्नाली को.
क्या कहने आप, तो बिल्कुल कहिए कि वो जो शतरंज में सबसे शह सवार आगे निकल गया. तो भाई अच्छा, अब आपने सुनाई अच्छी तरह से कहानी. अच्छा, अब आपकी एक बेटियां हैं, एक ही बच्ची है आपकी?
एक ही बेटी है, समर्पिता नाम है.
अच्छा,
समर्पिता सारंग है, पीवाई पाटिल में है वो, 9th में.
अच्छा, तो मुझे बड़ी एक अच्छी फोटो मिली है आपकी फेसबुक पर, जो कि आप बड़ी, जो एक बड़ी कलाकार हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं दुनिया भर में जानी जाती हैं, लता जी, उनके साथ. तो किस मौके की है ये तस्वीर?
ये हम लोग बॉम्बे गए थे, एक वहाँ इगतपुरी है महाराष्ट्र में, तो नासिक जाते हैं, तो उसमें एक हम लोग का शो था, उसमें सोनू निगम भी थे, सुरेश वाडेकर जी भी थे और उन लोग के साथ हम लोग एक प्रोग्राम हुआ था, बहुत ही वो सक्सेस हुआ था प्रोग्राम, उसमें हम बर्नाली दोनों थे. और उसके बाद जो है वहाँ से फिर सुरेश वाडेकर ने कहा कि बाप रे, आप पटना से आए हैं, तो हमको लगा कि कुछ मैंने ऐसे ही गाते उतने होंगे, लेकिन वो बहुत अच्छा हुआ था उस समय, हम हो सकता है अच्छा गा दिए थे, उतना अच्छा नहीं गाते हैं, लेकिन हो गया था.
अच्छा,
तो उसके बाद जो है वो बोले कि चलिए हम लता दीदी से मिलवाते हैं, और मेरे एक वहाँ थे इसके सिंगल एक वो थे, ये कस्टम में थे, सर्विस टैक्स में वो चेयरमैन थे, वो भी उस प्रोग्राम में थे, तो वो भी बोले हाँ भाई ये बिहार से आए हैं और हम लोग को मैंने उम्मीद नहीं हो रही उस प्रोग्राम में जब हुआ, तब वो बोले कि लगता है कि सोनू निगम हमसे बोले कि आप बॉम्बे में रह, पटना में रहते थे या पटना में रहते हैं, हम बोले पटना में ही हम रहते, तो बोला कि नहीं आपके प्रोग्राम देखने से तो नहीं लगता है कि पटना में रहते हैं, हम तो लगता है बॉम्बे में। लेकिन ये सब बात चलिए सर।
अच्छा।
तो उसी सिलसिले में हम लोग गए थे, सुरेश जी मैंने सुरेश वाडेकर जी भी गए थे और एस के सिंगल जी वो थे उन लोग के साथ में, तो हम लोग लता जी के यहाँ घर में गए पेटर रोड में, वो जो ये प्रभु कुंज लता जी के यहाँ, वहाँ पे हम लोग बैठ के कुछ बातें में शेयर किए। एक दो सीडी उस समय मैं किस सीरीज से आए थे भजन एक गजल का, वो सब फिर उनको प्रेजेंट किए।
अच्छा।
और काफी वो बेटी मेरी छोटी थी, फिर बेटी के साथ ही वो तस्वीर है,
बहुत ही क्यूट तस्वीर है।
डेढ़ घंटा उनके घर में मौका मिला, तो ये हम लोग का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे तो लोग हैं इधर उधर मिलते ही रहते हैं, लेकिन लता जी से मिलना और डेढ़ घंटा उनके घर में बैठ के म्यूजिक के बारे में सुनना उनसे,
बड़ी बात है। बिल्कुल,
हाँ, बहुत
बिल्कुल
बड़ी बात,
कोई
है।
इसमें शक नहीं। अच्छा, विकास बरला ने शुक्रिया अदा किया है वॉइस ऑफ अमेरिका का आप लोगों से बात करवाने और आपको मेहमान बुलाने पर। जी बिल्कुल, हमारे लिए भी एक ऑनर है कि हमारे तीनों मेहमान इस प्रोग्राम में। शफकतुल्ला मरवत ने लिखा है कि मैं इस प्रोग्राम पर तो आशिक हुई ही, लेकिन मैं बता दूं कि रात को जब मैं लेटता हूं तो कोई बांसुरी बजाता है और मैं बड़े शौक से सुनता हूं। सुभाष ठाकुर जी, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि बहुत खुश हैं कि आप इस प्रोग्राम में आए। मंसूर अहमद वोरा और कई लोग हैं, लेकिन मैं अपने सुनने वालों से एक बात कहूंगी, जैसे अल्ताफ अहमद ने अपना फ़ोन नंबर भेजा था, लेकिन आपने शुरू में ये नहीं लिखा कि आप किस इलाके से भेज रहे हैं, क्योंकि हमें कई दफ़ा यहाँ रह के पता नहीं लगता कि हमें इससे पहले कौन सा कोड लगाना है, कौन से मुल्क का। तो मेहरबानी से लिखिए कि क्या कौन सा लगाना है, आपको कोशिश कर रही है नुस्बत। और शबीर साहब आपसे भी ये दरख्वास्त है। अच्छा जनाब शफकतुल्ला मरवत ने ये भी लिखा है कि बहुत ख्वाहिश है कि अपनी बाजी की तस्वीर देख लूँ। बाजी की तस्वीर तो फेसबुक में मौजूद है कहीं ना कहीं, आप अगर गौर से देखेंगे तो मिल जाएगी। और चलिए अब हम बर्नाली, अब आप मुझे बताइए कि जब इतने सारे काम करती हैं तो घर गृहस्थी का क्या बनता है? दोनों के दोनों फनकार लोग हैं, तो अच्छी चलती है घर गृहस्थी या मुश्किल होती है?
मुश्किल तो नहीं रहती है। शुरू में जब हमारी शादी हुई थी तो एक बहुत ही प्लस पॉइंट ही था कि मेरे हस्बैंड भी म्यूजिशियन थे, मैं भी म्यूजिशियन थी और मेरी पूरी फैमिली, मेरी ससुराल की फैमिली, मेरे मायके की फैमिली, सारे ऐसे सारे म्यूजिक लवर्स भी थे और म्यूजिक माइंडेड भी थे, और उन्हें कोई एतराज भी नहीं था हमारे प्रोग्राम से या हमारे रिवाज से। तो मैं इस मामले में बहुत खुश नसीब थी कि समहाउ सभी लोगों ने मुझे हेल्प भी किया, कहीं से कोई मुश्किल मुझे इतनी ज्यादा महसूस नहीं हुई। लेकिन जब हाँ मेरी बेटी हुई थी तो कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर वाले की देन थी कि बेटी भी मुझे इस तरह से हेल्प करने लगी कि मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा समय दे सकूँ।
अच्छा।
कुछ खास परेशानी नहीं है, और जो परेशानी थी वो अगर नहीं होती तो शायद नहीं समझ पाते कि गृहस्थी के साथ साथ म्यूजिक से चलाना कैसे किया जाता है, तो इसलिए कुछ खास मुझे परेशानी नहीं हुई।
बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जब भी कोई खासतौर पर कपल काम कर रहा होता है, क्योंकि दोनों अगर मसरूफ़ होते हैं तो उन्हें मैनेज तो करना पड़ता है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। तो अच्छा, हमारे साथ कॉलर्स सर फेसबुक पर जो हैं, रहमतुल्ला बलोच, वली खान, राजा यूसुफ, माजिद जमान शानी, शाह ताहिर, काजी काशिफ, मोहम्मद शफी, हिलाल औरकज़ई, शुएब हसन निहालिका, शाहिद हसन, आतिफ और बाबर मुगल साहिबान हैं। और फ़ोन पर हमारे साथ हैं अल्लाह दीता शाकिर विहारी से। जी अल्लाह दीता शाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम बाजी
जी,
तो मेरा सवाल ये है मेहमानों से कि शरनाई और बांसुरी में क्या फर्क होता है?
ठीक है, तो ये जो है ये सुभाष ठाकुर साहब इसका जवाब देंगे कि शहनाई और बांसुरी में क्या फर्क है।
बांसुरी बांस की होती है, शहनाई लकड़ी की होती है, और इसके फूकने में भी काफी फर्क है। सुर उतने ही होते हैं, जिस तरह बांसुरी पे उंगली चलती है उसी तरह शहनाई पे उंगली चलती है, लेकिन शहनाई डेढ़ ऑक्टिव का साज है और बांसुरी ढाई ऑक्टिव का साज है। बांसुरी में हम ढाई ऑक्टिव तक बजा सकते हैं, शहनाई में सिर्फ डेढ़ ऑक्टिव तक बजा सकते हैं। दोनों पारंपरिक हमारे साज हैं, सदियों से चले आ रहे हैं।
बिल्कुल, तो लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि एक में मेटल इस्तेमाल हो और एक में लकड़ी इस्तेमाल हो, क्या इससे जो उसकी आवाज है उस पे फर्क आता है?
आवाज में फर्क आती है, लेकिन सहनाई में एक पत्ती लगती है जो तालाब में पाए जाते हैं, जिसके कारण उसकी आवाज अलग होती है। और बांस पूरी तरह से खाली होता है भीतर से, तो बांस की आवाज अलग होती है और सहनाई की आवाज लकड़ी पत्ती लगने से सहनाई की आवाज बदल जाती है।
अच्छा, तो चलिए क्यों ना आप कुछ कोई ऐसा हमें धुन सुनाइए जो आपके किसी सबसे पसंदीदा फनकार ने बजाई हो और आपको बहुत अच्छी लगती हो। है जहन में कोई ऐसी चीज?
फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा।
तो चलिए हम ऐसा क्यों ना करें कि हम ये करते हैं कि हम इनका एक गीत सुनाते हैं। हमारे जो दोनों फनकार हमारे साथ हैं,
हाँ जी,
इंद्रा इंद्रजीत और बर्नार्डिस का जी, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। इनका इन्होंने अपने शहर सूबे के बारे में, बिहार के बारे में एक बड़ा खूबसूरत सा गीत गाया है। लीजिए हम पहले उसको सुनते हैं और फिर आगे चलेंगे।
वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लव कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, जन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गर्जल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गर्जल, 80 बरस में चढ़ल जवानी की भोजपुरिया चमकल, राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले, एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले, गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार।
वाह वाह, मुझे इसमें सुन के ये अंदाजा हुआ कि तीन आपने जुबानों में यानी बोलियों में गाया है।
जी, ये पहला है भोजपुरी, अभी जो पसंतरा ये भोजपुरी में था
जी, हाँ भोजपुरी।
अंग्रेजन के हार हिलल जब कुंवर के घोड़ा गर्जल, 80 बरिस में चढ़ल जवानी की भोजपुरिया चमकल, राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गए, यही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समझले, और गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, अंगुरी मैंने फिंगर को कहा जाता है भोजपुरी में, गिनत गिनत अंगुरी थक जाई,
हाँ।
महापुरुष है हजार, बिहार में बोला जा रहा है। ये विनय बिहारी एक है, वो अभी MLA है और मंत्री भी थे कल्चर में, उन्हीं का लिखा हुआ है। तो वो
अच्छा।
ये गिनत गिनत अंगुरी थक जाए, महापुरुष है हजार, ये है मेरा बिहार। फिर ये आगे मैथिली में भी है, फिर मगही में भी है, मगह जगह बिहार में ही है, मगह जगह ऐसा है भैया, गा देते हैं, मगह जगह ऐसा है भैया, जहाँ बन गई राजधानी, राजा अशोक के चल रही शासन का इतिहास बखानी, बुद्ध के ज्ञान इन्हें पर मिल ले, ये मगी है, बुद्ध के ज्ञान इन्हें पर मिल ले, चर्चा विदेश ले भई ले, चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपने ले, जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार, ये है मेरा बिहार, मेरा।
अच्छा, अब तीसरी बोली जो है, तीसरी जुबान जो है ना, बर्नाली सुनाए हमें, याद है बर्नाली है आपको या नहीं याद?
हाँ, जी
आप सुनाए, जी सुनाइए आप।
मेरा
वाह जी वाह, बहुत खूब। अच्छा, हमारे साथ एक है हमारे सुनने वाले, उनका नाम है नत्थू फकीर। ये सिंध से इन्होंने फोन किया है, इन्हें भी गाने का शौक है, लेकिन इस वक्त हम इनका सिर्फ सवाल लेंगे नत्थू का। जी नत्थू, अस्सलाम वालेकुम। नत्थू फकीर,
वालेकुम सलाम। बाजी, बहुत दिनों बाद आपका नंबर लगा है।
अच्छा, तो आप पूरी ऐसा नहीं कीजिएगा, पूरी कसर पूरी कर लें।
आपको सब सब सलाम।
वालेकुम सलाम, हम सब की तरफ से। जी, तो क्या सवाल पूछेंगे मेहमानों से?
मेहमान से हमारा सवाल ये है कि बांसुरी हमको अगर है आप तो हमारे को थोड़ी सुनाए।
हाँ ठीक है, अभी सुनते हैं। हमने उनसे कहा भी था कि वो कोई सोचें अपनी पसंदीदा धुन, लेकिन मैं कुछ पैगामात पढ़ दूं। मोहम्मद फरहत अली ने इंडिया से, इनका पैगाम है कि आलमी तहजीब व सकाफत को उजागर करने का शुक्रिया। फरहत साहब, ये तो हमारी अपनी तहजीब व सकाफत है, ये साज और ये आवाज़, और मुझे खुशी है कि आप ये सुनते हैं और सराहते हैं। फयाज जरगर साहब, जाहिद खान नावलिस्ट, शौकत मलिक, इंजीनियर खुर्रम साहब, शाहिद अनवर, इन सब ने भी पैगामात भेजे हैं। इसके अलावा रहमतुल्ला बलोच भी हमारे साथ हैं। तो अब हम कहेंगे सुभाष जी से। सुभाष जी, अब आपको सुनाइए, आपने इतनी देर में सोच लिया होगा कुछ ना कुछ, तो ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा। जी
थोड़ा सा सुनाता
हूं। जी सुनाइए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा हमें ज़्यादा ही सवाल सुनाया। अच्छा, मृणाली और इंद्रजीत, आपसे शफकत मरवत ने पूछा है कि हमारे मेहमानों से पूछना है कि छोटा सा बच्चा कौन है। तो ये छोटा सा बच्चा एक बच्ची है, जैसा कि इन्होंने अभी बताया। जी,
छोटा सा बच्चा मैंने तस्वीर में
आपके साथ लता जी के साथ जो है वो आपकी बेटी है ना?
हाँ, वो मेरी बेटी है।
क्योंकि पैंट और टी शर्ट पहनी है, तो जाहिर है कि लोगों के लिए पैंट और टी शर्ट पहने हुए उस तस्वीर में ना।
हाँ,
तो
वो लता जी के साथ।
जी, लता जी के साथ जो है बच्ची है
वो मेरी बेटी,
वो हमारी बेटी है।
बिल्कुल, तो बेटी जो है आपकी, वो आप क्या कर रही है इस वक्त? म्यूजिक से कोई ताल्लुक है उनका?
मेरी बेटी, हाँ, म्यूजिक से है, उसको डांस का और पेंटिंग का बहुत शौक है और वो बहुत अच्छा करती है, और वो अभी क्लास 9th में है, डीआई पाटिल स्कूल में है।
अच्छा,
और बहुत अच्छी लिसनर भी है, अगर वो नहीं होती तो शायद म्यूजिक में नहीं कर पाती।
देखिए, ये जो है खुशी की बात ये है कि वैसे तो मैं मजाकन ये बात कह रही हूँ, वैसे तो बेचारी मजबूर है, अम्मी अबू दोनों ही जब बजा रहे हैं सुनना तो उसको पड़ता होगा, लेकिन होता यही है कि बच्चे को अगर शुरू से उसके कानों में जो चीज़ पड़ती है, जो पॉजिटिव बात है, तो खुद ब खुद उसके दिल में शौक भी होता है और वो देखती भी है कि फिर आप लोगों को जो इज्जत और तौकीद मिलती है और जो एक खूबसूरती है उसमें पूरी, तो उन्हें अच्छा तो लगता होगा। अच्छा, आफ्ताब शब्बीर ने लिखा है, ये जम्मू कश्मीर से उन्होंने लिखा है कि मैडम, आप सिर्फ पाकिस्तान वालों को मौका मिलता है कश्मीर वालों को फ़ोन करने का, तो मसला ये है आफ्ताब कि हम बराबर, आफ्ताब शब्बीर, आपको फ़ोन कर रहे हैं और आपका फ़ोन नहीं मिल रहा। हमने पहले भी इसीलिए कहा, करने के बाद ही आपसे पूछा कि इसमें मैंने सोचा शायद एरिया कोड सही नहीं है, तो हमें अफसोस है कई दफ़ा आपके इलाकों के फ़ोन नहीं लगते हमारी कोशिश के बावजूद, ये थोड़ा सा शोर है फ़ोन में, अगर आप इनको अच्छा सुभाष जी, आप अब हमें ये बताइए कि आप जो हैं, ये पूरा सफ़र जो है आपका, उसमें अब ये तो हुआ है ना कि जो मगरबी इंस्ट्रूमेंट हैं वो शामिल हो गए हैं, ऑर्केस्ट्रा जो हैं, फिल्म म्यूज़िक है या जो भी म्यूज़िक है उसमें असर तो है मगरब का बहुत ज़्यादा, तो इससे जो रिवायती साज हैं हमारे उन पर कोई असर पड़ा है या अभी तक उनके बनाने वालों के लिए, क्योंकि आपकी बात और है, आप तो बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन छोटे छोटे जो गाँवों में और छोटी जगहों पे लोग रहते हैं और वो बांसुरियाँ बजाते हैं, बनाते हैं, तो उनके लिए कोई गुंजाइश है इसको एज अ प्रोफेशन अपनाने की और इसमें पैसे कमाने की?
देखिए, भारत सरकार ने अभी हमें बुलाए थे वो MSME माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री वाले, उन्होंने मुझे बुलाया था और इसलिए बुलाया था कि बांसुरी को कैसे पूरी दुनिया में इसका मार्केटिंग की जाए, जो ताकि अच्छी कीमत बांसुरी बनाने वालों को मिल सके। तो हमारे पूरी दुनिया में जितनी बांसुरी बिक रही है उसमें जो लोकल फ्लूट है, जो डंडे में लगा के स्ट्रीट फ्लूट जिसको हम कहते हैं, वो सबसे ज्यादा पीलीभीत में बनती है। तो उससे काफी रिसर्च उन लोगों ने किया था, तो उसमें से कुछ मुझे अच्छे लगे, कुछ मैंने काटे उनको और अपना सजेशन भी दिया उनको किस तरह इसको डेवलप किया जाए, और उस पर मिनिस्ट्री काम भी कर रही है। देखिए, बांसुरी को पहले क्या थी कि बांस आया, बांस को काटा और बांसुरी बनाया और डंडे में लगाया, बेच दिया। अभी हम लोगों ने आके खासकर बांसुरी को सजाने का काम, संगीत से तो अच्छा किया ही है उसको, उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी की है, उसकी खूबसूरती पर काफी ज्यादा ध्यान दिया हमने बांसुरी के ऊपर। रंगीन धागे बांसुरी में लेके मैं आया हूँ जो बांसुरी को खूबसूरत सजाया जाए और उसकी आवाज को भी और अच्छी बनाया जाए। पहले क्या थी कि बांसुरी को छेद दिया और बांसुरी बजाने लग गए कलाकार लोग, नहीं, अब क्या सिर्फ छेदना नहीं है, उसके एक एक आवाज को, एक एक छेद के आवाज को उसको डेवलप किया गया, उसको अच्छा किया गया है और सुर की बारीकियों को बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। पहले एडजस्ट करके बजती थी, अब एडजस्ट नहीं करनी पड़ती है, आप फूक मारिए सारे सुर एक जैसे एक फूक में बजती है। तो और कुछ दिन पहले मैं बताऊं कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर मैं लिस्ट किया हूं अपना बांसुरी, सबसे पहले मैंने ही किया इंडिया में लिस्ट, तो सबसे ज्यादा बिकने वाली जो साज थी संगीत में वो गिटार थी ऑनलाइन, लेकिन अभी बांसुरी गिटार से ऊपर निकल चुकी है।
अच्छा।
और काफी ज्यादा प्रचार प्रसार बांसुरी का हुआ है, और जो मैंने एक मार्केटिंग किया, पहली इसकी प्रोफेशनल फोटोग्राफी मैंने करवाई है बांसुरी की। उससे पहले जब मैं करने गया था तो नेट पर सर्च किए फोटोग्राफर ने बांसुरी की कैसी फोटोग्राफी की जाए, तो कुछ नहीं मिला। तो बहुत मेहनत करके एक बार दो बार तीन बार बांसुरी के एक एंगल को डिसाइड किया हमने कि इस तरह के फोटो अगर बांसुरी की ली जाए तो अच्छी दिखेगी। तो पहली बांसुरी का प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी मैंने कराया है। इसके बाद बांसुरी को बैग में केस में देके उसको बेचा जाए, इसकी शुरुआत भी मैंने की है, क्योंकि बांसुरी के केस थे ही नहीं, किसी को जैसा मन करे अपना कपड़ा ले जाके टेलर से किसी से बनवा लेता था। तो एक केस को डिसाइड किया कि इस तरह का केस में होना चाहिए, खूबसूरत तो होना ही चाहिए। ई कॉमर्स, पहली दुनिया में बांसुरी की ई कॉमर्स वेबसाइट मैंने बनाई 2004 में।
अच्छा।
और नहीं तो उससे पहले क्या होती थी कि इंडिया से बांसुरी अमेरिका जाती थी या इजराइल जाती थी या यूके जाती थी, वो लोग थोड़ा फिनिश करके ऑनलाइन 50 गुना कीमत में या 100 गुना कीमत में बेचते थे। नहीं, मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बना के उसको अच्छा सजा के अच्छी तरह मैंने करके उसको बेचना शुरू किया। तो ये हुआ कि लोगों को पहले ई कॉमर्स से खरीदते थे तो एक महीने में बांसुरी मिलती थी, मैंने पूरी दुनिया में 3 से 5 दिन के अंदर में डिलीवरी करना शुरू किया फ्लूट। तो बाहर से अमेरिका से भी वहां से कमेंट्स भी आने लगे मेरे पास, क्या इंडिया वाले इतने एक्टिव हो गए कि 3 से 5 दिन में डिलीवर कर रहे हैं, ये बहुत
अच्छा।
सारे कमेंट्स आते थे मेरे पास।
हाँ।
तो इसको एक कमर्शियल मार्केट बांसुरी को लाने का मैंने बहुत कोशिश किया और आज बहुत सारे लोग मेरा फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे मेकर हो गए, वो भी रंगीन धागा बनाने लगे, उन्होंने भी ई कॉमर्स वेबसाइट की। तो एक नई मार्केट जरूर पैदा हो गई है और काफी ज्यादा डिमांड हो गई है बांसुरी की।
बड़ी खुशी की बात है ये। तो
मैं हर साल मेरा लगभग टर्नओवर डबल होता जा रहा है।
अच्छा, तो कितनी क्या कीमत क्या है बांसुरी की?
देखिए, मेरी जो सबसे छोटी बांसुरी की कीमत है वो 2000 है और सबसे बड़ी जो बांसुरी की कीमत है वो 21,000 है।
21,000। तो आपके जो सबसे ज्यादा खरीदने वाले हैं गैर मुल्कों में, वो कहाँ से हैं?
वो अमेरिका में, इंडिया के बाद अमेरिका है। और मैं बताऊं कि पाकिस्तान में जितने भी अच्छे बांसुरी वादक हैं सब लोग मेरी बांसुरी बजाते हैं।
मुझे मालूम है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सलमान हैदर जो है और कई लोगों ने जिक्र किया मुझसे,
बाकी रवाज सलमान है, बहुत जितने भी टॉप लेवल पाकिस्तान में बांसुरी बजाने वाले हैं, अफगानिस्तान में कुछ लोग हैं जो मेरी बांसुरी बजाते हैं, बांग्लादेश में जो अच्छे बजाने वाले हैं मेरी बांसुरी बजाते हैं।
उनके नाम क्या है, किसी के नाम बताइए हमें, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वहाँ भी लोग सुनते हैं क्योंकि
नाम अचानक मैं नहीं बता सकता,
कोई बात नहीं, चलिए ठीक है।
हाँ, नाम सारे कस्टमर का याद रखना ठीक नहीं है। जैसे हॉलीवुड में स्टीव बॉर्न है जो ऑस्कर अवार्ड उन्होंने पाया है, बहुत सारे अवार्ड पाया है, वो मेरी बांसुरी बजाते हैं वहाँ पे हॉलीवुड में।
अच्छा ठीक है। अच्छा विकास बरला साहब, आपने ये पूछा है राजस्थान से हमसे कि क्या व्हाट्सएप से आप फ़ोन कर सकते हैं। बदकिस्मती से फ़ोन हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते यहाँ स्टूडियो में, हमारे लिए लैंडलाइन से फ़ोन मिलना ज़रूरी है, लेकिन इसीलिए हम आपका फ़ोन नंबर मांग रहे थे और बाकी ट्राई भी कर रहे थे कई लोगों को, लेकिन यह है कि व्हाट्सएप पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे टेलीफोन से। अगर आपने नंबर भेज दें तो मैं आपको ज़रूर आइंदा प्रोग्राम में किसी वक्त ले लूँगी, क्योंकि मुझे खुशी होती है ख़ासतौर पर जब इंडिया से हमारे मेहमान होते हैं कि वहाँ से भी फ़ोन आए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा जानते हैं उन लोगों को। अच्छा अब हमारे दोनों जो हमारा जोड़ा है बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक वाला, कोई चीज़ मिलके अब आप सुनाइए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, नुखपत कह रही हैं कि जो दूसरा फ़ोन है उसमें कुछ थोड़ी सी आवाज़ है, तो हम ऐसा आप ऐसा कीजिए कि आप एक ही फोन पर दोनों, यानी इंद्रजीत के फोन पर आप दोनों सुना दीजिए, क्योंकि जब गाएंगे वो तो आवाज आएगी जी, तो सुनाइए कुछ अब जी।
क्या सुनाना,
जो आपका दिल चाहे, जो आपकी पसंद की चीज हो, कोई खूबसूरत सी, बल्कि ऐसी कोई मीठी सी चीज जैसे कि भोजपुरी में कोई,
भोजपुरी
हाँ
भोजपुरी या कोई गजल सुना देती।
हाँ बिल्कुल सुनाइए, लेकिन जो दोनों को आती हो ताकि दोनों सुना सके।
दोनों जी जी जी
पहले तो अपने दिल की रजा जान जाइए, पहले तो अपने दिल की रजा जान जाइए, फिर जो निगाह है यार कहे मान जाइए, पहले तो अपने दिल की रजा जान जाइए, फिर जो निगाह यार कहे मान जाइए,
अपनी निगाह की राह गुजर जान जाइए, पहली निगाह की राह गुजर जान जाइए, फिर गर्द राह जो कहे मान जाइए, पहली निगाह की राह गुजर जान जाइए।
जी 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 सुनाइए।
कह रही है आपसे सीने की धड़कने, कुछ कह रही है आपसे सीने की धड़कने, कुछ कह रही है आपसे सीने की धड़कने, मेरा नहीं तो दिल का कहा मान जाइए, मेरा नहीं तो दिल का कहा मान जाइए,
एक धूप सी जमी है निगाहों के आस पास, एक धूप सी जमी है निगाहों के आस पास, एक धूप सी जमी है निगाहों के आस पास, ये आप हैं तो आप पे कुर्बान जाइए, ये आप हैं तो आप पे कुर्बान जाइए, ये आप हैं तो आप पे कुर्बान जाइए,
पहले निगाह राह गुजर जान जाइए,
पहले तो अपने दिल की रजा जान जाइए,
रजा जान जाइए,
रजा जान जाइए, रजा जान जाइए।
क्या कहने, बहुत अच्छी तरह ये तो आपने बाकायदा रिकॉर्डिंग के जैसा सुना दिया। अच्छा बाबर मुगल और आतिफ सियार भी हमारे साथ हैं फेसबुक पर, मोहम्मद शफी ने नंबर भेजा था जो नहीं मिल रहा, और हबीब साहब टेलीफोन पर हमारे साथ हैं। जी हबीब साहब
जी सलाम रावलाकोट से हबीब हुसैन शाह बोल रहा हूँ।
जी हबीब हुसैन शाह,
जनाब अभी आज आपने बहुत खुशी का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि आपकी वो खतूत और दुखी इंसानों की बातें सुन सुन के तो मैं रोता हूँ, तो आज बड़ा हंसा हूँ। बांसुरी में भी
देखिए 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 सुनिए सुनिए बैलेंस बैलेंस ये है मेरी कहानी और कुछ तो कहिए सुन के आप हंस खुश होते हैं मेरी कहानी, क्योंकि जाहिर है इंसानों की कहानियां ज्यादातर ऐसी होती हैं, क्या बताएं, जिंदगी में दुख तो बहुत है ना, तो कुछ कहिए हमारे मेहमानों के लिए, क्या चीज अच्छी लगी आपको?
बहुत बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी है, बाखदा यकीन करें अगर रास्ते खुले हों तो मैं इनको मिलने के लिए हूँ।
अच्छा,
इंडिया में हाँ मुझे बड़ी, मैं एक दफा गया था पहले और मैं अक्सर कालमों में यही लिखता हूँ कि अमन और रास्ते खुले, और आपको बहुत मुबारक हो, आप तो मौसीकी में भी बहुत माहिर लगती हैं, हर किस्म की आप उनसे पूछती हैं, और उनको आपके मेहमानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मैं खुद भी बांसुरी बजाता हूँ और गाने गाता रहा हूँ बचपन में।
तो कहाँ है बांसुरी इस वक्त, है आपके पास बांसुरी?
बांसुरी है, बिल्कुल है।
तो चलिए ठीक है, अगले हफ्ते आप बांसुरी के साथ आइएगा, ठीक है?
चलो अगले हफ्ते मैं करूँगा। बहुत मुबारक हो जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपके मेहमानों को मेरी तरफ से बहुत मुबारक।
ठीक है,
बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने,
बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप लोगों को बहुत पसंद कर रहे हैं ये, और हमारे सब सुनने वाले बहुत मोहब्बत से आपको, बहुत से लोगों ने नेक तमन्नाएं भेजी हैं, खान वजीर भी उनमें शामिल हैं और बहुत से जिनके पहले भी मैंने नाम पढ़े। तो अब आखिर में मैं ये कहूँगी कि ठाकुर साहब, आपके लिए तो बहुत कुछ कहा हमारे जो इंद्रजीत हैं उन्होंने, आप दो एक मिनट के लिए इनके लिए बारे में बताइए, इनके फ़न के बारे में, बिहार में जो ये गाते हैं ये किस जगह पर हैं और कैसा गाते हैं और कैसे लगते हैं आपको?
मैं कहूँ कि 1 करोड़ ऑडियंस हो तो जरूर इनके प्रोग्राम से बोर नहीं होंगे। ये स्टेज के कलाकार हैं, ये इतने बड़े कलाकार हैं कि एक एक को झुमा देंगे और एक एक को झुमाते हैं इनके प्रोग्राम में, और मैं खुद इनसे, मेरे मित्र हैं लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे।
बहुत खूब। अच्छा, तो ये जो है आपको वैसे इनकी क्या चीज बहुत पसंद है, इनकी गजलें, ये बंगाली में क्यों नहीं गाते? गंगोली से मुझे अंदाजा हुआ कि ये बंगाली है ना?
जी बंगाली है, बंगाली में भी गाते हैं,
गाते हैं बंगाली में।
इनका जन्म पटना में है तो दोनों भाषा में गाते, बंगाली भी गाते हैं। ये सुनाएंगे बंगाली में जरूर आप
सुना? तो ठीक है भाई, फिर तो आपको अब सुनाना ही पड़ेगा। आप दोनों मिलके कोई बंगाली की चीज याद है आपको जो आप सुना सके?
हाँ अच्छा, दोनों मिलके हम सुना देते हैं बंगाली सुना।
आप ये देखिए, आपने ये गौर किया कि मैं दो दिलों को जुदा नहीं होने देती, हमेशा साथ साथ।
शुक्रिया इसके लिए, शुक्रिया। और कल हम लोग का कल ही ना था, आज है ना, कल 7 दिसंबर था। हाँ। तो वो 7 दिसंबर को मेरा मैरिज एनिवर्सरी की।
क्या कहने भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। कितने साल हो गए शादी को?
अभी तो 24 साल हो गए। एक साल बाद आप लोग को हम सिल्वर जुबली
हो गया आपकी। तो सिल्वर जुबली पे केक वगैरह भेजना ना भूलिएगा, सुनने वाले तमाम लाखों सुनने वालों को और हमें, तो हम इंतजार करेंगे। तो चलिए ऐसा क्यों ना करें कि अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने के करीब है, तो मैं प्रोग्राम को खत्म कर देती हूँ और आपका गाने पे खत्म होगा प्रोग्राम। तो समीन हमारे साथ में मेहमान, जैसे कि आपने बार बार उनका नाम सुना, सुभाष ठाकुर जी, इंद्रजीत गंगोली और बर्नाली गंगोली, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप सब इनको मुबारकबाद जरूर फेसबुक पर दे सकते हैं। और इसके साथ ही मैं प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहूंगी, लेकिन ये दोनों, ये खूबसूरत जो जोड़ा है, ये हमें अपना एक बंगाली गीत सुनाएगा जी। अच्छा तो ये होता कि पीछे सुभाष जी बांसुरी बजा रहे होते, लेकिन चलिए बगैर बांसुरी के गुजार।
इसके लिए एक लाइव होना है तो हाँ।
नेक्स्ट टाइम
शो करवाएं मैडम,
नेक्स्ट टाइम
हम लोग जरूर शिरकत करेंगे, बिल्कुल सुना देते हैं बांग्ला हम लोग दोनों।
ठीक है, चलिए
बंगाली सॉन्ग।
तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज और सुनिए गीत जी। जी सुनाइए।
তুমি সূর্য ঠাকুর আমার আশারায় ভরা রাতি, তুমি সূর্য ওঠা ভোর আমার আশারায় ভরা রাতি,
আমার স্বপ্ন তুমি তো চিরদিনের সাথী।
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے انتباہ کیا ہے کہ شام اور اس کے عوام کو 7 سال سے زیادہ عرصے کی جنگ کے بعد بحالی میں کئی اشرے لگ جائیں گے۔ جنیوا میں ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے صدر دفتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں رضی احمد رضوی۔
ریڈ کراس کے ایک سینئر عہدیدار نے جو ابھی شام سے لوٹے ہیں بتایا ہے کہ جنگ سے متاثرہ اس ملک میں جو تباہی ہوئی ہے وہ ناقابل تصور ہے۔ مشرق قریب اور مشرق وسطی کے لیے آئی سی آر سی کے علاقائی ڈائریکٹر فیبریزیو کاربونی کا کہنا ہے کہ حلب کے قدیم تاریخی شہر میں تباہی کو دیکھ کر انہیں صدمہ پہنچا ہے۔
In this city of Aleppo, I've never seen so many people crying. They carry such a weight, a pain.
حلب کے شہر میں ہم نے کبھی بھی اتنے لوگوں کو آہوزاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب آپ شہر کا حدود اربا دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ کر سخت دکھ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر بوجھ ہے، وہ اندوہ کا شکار ہیں اور بہت سوں کے لیے ایک نا امیدی کی کیفیت ہے۔ جنگ سے پہلے حلب شام کا ایک بڑا زرعی مرکز تھا جس کی آبادی تقریباً 1,65,000 تھی۔ کاربونی کا کہنا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں پھٹنے سے رہ جانے والے گولہ بارود اور بارودی سرنگیں جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں بہت سے بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہی ہیں یا انہیں اپاہج بنا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی سی آر سی زخمیوں کی مدد کر رہی ہے، اس کے پاس مہارت اور ہڈیوں کے امراض کے مرکز موجود ہیں۔ کاربونی کا مزید کہنا ہے کہ ان کے ادارے کا ایک اور اہم کام یہ ہے کہ لاکھوں لاپتہ لوگوں کے بارے میں معلوم کیا جائے۔
It's something which poisons a society because beyond the pain of not knowing there are also a lot of consequences.
یہ ایسا معاملہ ہے جو معاشرے کو زہر آلود بناتا ہے، اس لیے کہ لاپتہ ہونے کے درد سے پرے اس کے اور بھی نتائج ہوتے ہیں۔ بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ لاپتہ ہوتے ہیں وہ روزی روٹی کمانے والے ہوتے ہیں، لہذا لاپتہ لوگوں کے خاندان اکثر خطرناک صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ کاربونی کا کہنا ہے کہ ریڈ کراس نے ان لوگوں کی فہرست کا شامی حکام سے تبادلہ کیا ہے جو لاپتہ ہو گئے ہیں یا جنہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ تاہم انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکام کو لاپتہ ہونے والوں کے خاندانوں کی اجازت کے بغیر نام نہیں دیے جاتے۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ سرکار کی جانب کے لوگ بھی اس صورتحال کا شکار ہوئے ہیں اور ان کے رشتہ دار بھی لاپتہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا اتہ پتہ معلوم ہونے سے متاثرہ خاندانوں کو معمول کی زندگی گزارنے اور امن و سکون کی جانب پیش رفت میں مدد ملے گی۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویب سائٹ دیکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے, وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com, تو آپ ہمارے فیس بک پیج کو وزٹ کر سکتے ہیں جس کا ایڈریس ہے facebook.com/voaurdu. یعنی اگر آپ ہماری ویب سائٹ پر نہیں جا سکتے تو ہمارا فیس بک کا پیج وزٹ کر سکتے ہیں جہاں پر تازہ ترین ویڈیوز اور رپورٹس آپ کو پڑھنے کو ملیں گی.